दीपराज बाबा हम सभी के बीच में हम सभी को शुभ प्रेरणाएं दे रहे हैं, नजरों से निहाल कर रहे हैं हमारे बड़ों के द्वारा भी। और इस शुरुआत के साथ अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय आशा दीदी जी से कि इस विंग के कर्ता धर्ता और पूरे यज्ञ के निमित्त बाबा ने जिन बहनों को बनाया है अपने सेंटर से अपनी सेवाओं से निवृत्त होकर के हमारे बीच में चार दिनों के लिए आप सभी पहुंचे हैं, तो न केवल इस विंग की सेवाओं के लिए लेकिन स्व सेवा और साथ साथ विश्व सेवा का बैलेंस रखते हुए दीदी के दिल में हमेशा बहनों के प्रति यज्ञ के प्रति बहुत सारी प्रेरणाएं, बहुत सारे नवीनताएं, पुरुषार्थ के लिए बहुत सारी बाबा से भी जो टचिंग्स आती हैं। तो आदरणीय दीदी से अभी हम अनुरोध करते हैं कि वो सारी आज हमारे बीच में शेयर करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी।
ओम शांति, ठंडी ठंडी ओम शांति, ओम शांति। तीन बातें मेरे बुद्धि में जो ऑफ द रिकॉर्ड रखना, ऑफ द रिकॉर्ड, अभी रिकॉर्ड नहीं करना। तो मैं समझती थी बचपन में छोटे से नाम आशा था, है तो हमेशा मेरे को दादी सब लोग जब भी मिलते थे तो कहते थे, और भी लोग मिलते थे हमेशा ये कहते थे, तुम किसकी आशा हो? अच्छा, वे पक्का हो गया बाबा की आशा है। आज भी विधात्री बहन यही बात कह रही है कि सबकी आशाएं बाबा की आशा है। मैं पूछती हूं आखिर आशा विश्वास में कब बदलेगी? आशा को विश्वास में बदलना होगा ना, तो अभी तक क्या मैं विश्वास में बदली नहीं हूं? ये सवाल उठता है। सिर्फ आशा ही है, आशा पूर्ण हो ना हो लेकिन आशा विश्वास में बदल, विश्वास निश्चय से भी बड़ी चीज है। निश्चय से भी बड़ी चीज विश्वास, वो विश्वास बाबा का हम बच्चों में हो, मुझ आत्मा में बाबा का विश्वास चाहिए, परिवार का विश्वास चाहिए। ये है प्यूरिटी की पराकाष्ठा। जितना जितना आत्मा स्वच्छ होती जाती है, निर्मल होती जाती है, उतनी उतनी आत्मा विश्वसनीय बनती जाती है। विश्वास के पात्र बनती जाती है। प्यारे बाबा ने हमें जन्म दिया, किस लिए दिया? क्या केवल थोड़ा सा बाबा का कारोबार संभालने के लिए दिया? दो चार दस बीस हजार सौ सेंटर संभालने के लिए दिया? बाबा ने जन्म मुझे इसलिए नहीं दिया है। किस लिए जन्म दिया? विश्व का मालिक बनाने के लिए जन्म दिया, अपना वारिस बनाने के लिए जन्म दिया है। वो कहता है मेरे पास ये इतना अखुट वर्षा है, मुझे वारिस चाहिए जो मेरे वर्षे को संभाल सके। ये समय आया है जो मैं वर्षा दे रहा हूं, उस वर्षे को कौन संभालेगा? मैंने तुम्हें जन्म इसलिए दिया है। क्या सच में जो बाबा ने दादी जी में विश्वास रखा और अव्यक्त होने से पहले बाबा ने दादी को कहा, 15 दिन के लिए आप सब जानते हैं कि बाबा कभी भी बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि को मधुबन में रहने नहीं देते थे। दादी का दिल करता था जैसे और टीचर्स आती हैं, आके रहती हैं, मैं भी रहूं, परंतु दादी जी को बाबा बिल्कुल नहीं रहने देते थे। बाबा को कहती थी, दादी बाबा मेरे को 2 दिन तो रहने दो। नहीं बच्ची, 13 स्थान फील्ड में है, सेवा स्थान पर है, फील्ड में है 13 स्थान, यहां नहीं। तुम्हें फील्ड में रहना है, परंतु अव्यक्त होने से पूर्व 15 दिन पहले बाबा ने दादी को कहा, क्या तुम रुक सकती हो? दादी तो सदा हां जी करने वाले, दादी ने कहा हां जी बाबा। फिर बाबा ने दादी को पूछा, क्या तुम यज्ञ को संभाल सकती हो? अब ये तो एक नया प्रश्न था दादी के लिए, क्योंकि यज्ञ में तो बाबा बैठा है। ये तो कोई के मन चित्त में भी नहीं था कि बाबा अव्यक्त हो जाएंगे। लेकिन दादी एक होवनहार पुत्र जैसे होता है, दादी जी का उत्तर क्या था? बाबा ने कहा क्या तुम यज्ञ संभाल सकती हो, तो दादी का उत्तर क्या था? जी बाबा, आप सिखाएंगे, आपकी मदद होगी, संभाल। ये है वेरी नाइस, ये है जबरदस्त दादी का स्वयं में विश्वास, बाबा में विश्वास और बाबा का दादी में विश्वास। बाबा ने दादी को सब बातें समझा दी 15 दिनों में, सब समझा दिया। हर बात जैसे वर्षा पास ऑन करते हैं, बाबा ने वो वर्षा पास ऑन किया 15 दिन के अंदर, सब कुछ बताया। लास्ट में दृष्टि देते देते बाबा का हाथ दादी के हाथ में और बाबा पंछी बन के। तो मैं कई बार सोचती हूं और पूछती भी हूं अपन से, कभी कभी मैं क्लास में भी ये बात कहती हूं, हम सब समर्पित हैं, मेजॉरिटी समर्पित बैठे हैं। जो समर्पित है हाथ खड़े करो, ऑलमोस्ट, जो नहीं है वो हाथ खड़े करो, बहुत थोड़े हैं, मेजॉरिटी समर्पित है। तो मैं कभी कभी पूछती हूं, सोचती हूं, समर्पित हम भी हैं, समर्पित दादियां भी हैं, दादी जानकी समर्पित ऐसे बैठती थी बाबा के सामने, कई लोग बैठते थे, बाबा यज्ञ की चाबी देगा तो किसको देगा, दादी जानकी को देगा, क्यों देगा, साथ में और लोग भी हैं, उनको क्यों देगा, औरों को क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिलेगी, जब मैं भी पूरा समर्पित हूं मुझे क्यों नहीं मिलेगी, दादी को मिलेगी, क्यों, वो क्या अंतर है, क्या अंतर है जो बाबा उनको देगा मुझे नहीं, वो अंतर हमारा पुरुषार्थ है, वो जो अंतर है वो हमें पुरुषार्थ करना है। और कभी कोई पूछता है हम क्या पुरुषार्थ करें, तो मैं हमेशा समझती हूं ऐसी आत्मा पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहती। जो पुरुषार्थ करना चाहता है वो पूछता नहीं है, उसे सब कुछ स्पष्ट क्लियर होता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या पुरुषार्थ करें, माना बाबा ने तो बताया हुआ क्या पुरुषार्थ करना है, हम संगम पर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन विंग में आए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी विशेषता है, सत्यों के एडमिनिस्ट्रेशन की, सत्युगी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा सत्युग में, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ना हो सोशल सर्विस नहीं होगी वहां, डॉक्टर्स नहीं होंगे वहां, इंजीनियर्स नहीं होंगे, इंजीनियर्स होंगे और विंग हो या ना हो एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा, ज्यूरिस्ट नहीं होंगे, बहुत बहुत नहीं होंगे, आईटी नहीं होगा, रिलीजियस नहीं होगा, बहुत सारे नहीं होंगे जी, सिक्योरिटी भी नहीं होगा, सिक्योरिटी का भी नहीं होगा, बहुत सारे नहीं होंगे, वो छोड़ो, वो होंगे नहीं, उसको किनारे करो, हम अपने को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता क्या है बताओ, उस एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता क्या है, हाँ बोलो जयंती बहन, नजदीक आके बोलो, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत, ये आप रिजल्ट सुना रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स क्या होंगे, क्या नहीं होगा? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक सुना रहे हैं? आपने भी ठीक सुना है। दो पावर्स जो हम यहां पर करते हैं वहां पर भी वो दो पावर्स होंगी, दो की जगह वो एक हो जाती है। यहां पर है कंट्रोलिंग और रूलिंग, वहां पर कंट्रोलिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल रूलिंग होगी। और वो जो रूल होगा हमारा, उसमें धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों सम्मिलित होंगे। धर्म भी होगा तो राज्य भी होगा। अब धर्म सत्ता किस रूप में दिखाई है? आप देखेंगे राजाओं को हेलो के रूप में, राज्य सत्ता रत्न जड़ित के रूप में। तब तो वो चलेंगे ना, राजा होंगे उस समय, प्रशासन की विधि राजा ही है, राजा ही है। और राजा ही कारोबार कैसे चलेगा? राजा ही कारोबार कैसे चलेगा, वो प्रशासन कैसे चलेगा? नेचुरल, ऑटोमेटिक। जो हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट के लिए लोग आज भी कहते हैं, यहां पर हम किसी को कुछ भी कहता देखते नहीं, सब ऑटोमेटिक नेचुरल चलता है। ये हमारे संस्कार बनते हैं। दो चार दिन पहले मैं ORC की क्लास में पूछ रही थी, क्लास में आए, अटेंडेंस लगे, क्या हम अटेंडेंस के डंडे के आधार से क्लास में आते हैं कि मेरी अटेंडेंस लगेगी, या हम नेचुरल, ये मेरा पढ़ाई का समय है, बाबा से प्राप्ति करने का समय, या हम इस भावना से आते हैं? फर्क पड़ जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर जो विधि विधान सिखाया वो है नेचुरलपन। बाबा कहते हैं नेचर क्योर, नेचुरल, जिसको आप ओरिजिनल भी कहते हो। तो नेचुरल स्वरूप हमारा क्या है? वो चीजें बाबा क्यों कहता है बार 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 अपने नेचुरल उसमें आओ, क्यों कहता है? क्योंकि यही नेचुरल चीज हमारी सत्युग में काम आनी है, जिसको बाबा कहता है अनादि और आदि संस्कार। वहां विजडम होगा, डेफिनेटली होगा। विजडम ऐसा है जो संकल्प चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देवताएं सोचते नहीं हैं, देवताएं निर्णय नहीं करते हैं, बुद्धि चलाने की आवश्यकता तब होती है जब दो द्वैत है ही नहीं, है ही नहीं। देवताओं को कोई निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है, देवताओं को आवश्यकता है निर्संकल्प रहने की, उनके संकल्पों से कारोबार चल रही है। नेचुरल जो हम संगम पर भर रहे हैं, अपने इस स्वरूप को, विजडम है, लव है, शांति ऑटोमेटिक है, शक्ति भी है, आनंदमय स्थिति है, पवित्रता भी है, सब नेचुरल है। हर एक को नेचर खींचती है, उसमें रहना सहज होता है। सरल होता है। इसका विधान क्या है? बाबा इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें कौन सा विधान बताते हैं? सब पुरानी बहनें बैठे हो, बताओ। आप सब टीचर्स हो, क्लास कराते हो, बताओ। वही चीज काम आती है आगे चलकर के, जितना उस चीज के संस्कार बनते हैं, उस विधान के संस्कार बनाने हैं। आप बोलो मधुबेन, पढ़ाई, और बोलो आत्मा आत्मा भाई भाई, और बोलो। एक विशेष चीज है बाबा जो पढ़ाता है, उसमें भी वो विधान है, और वो चीज बाबा हमारी चाहता है, उससे नेचुरलपन रहेगा। बोलो अमृत वेला, और बोलो जी। सुनो, हम क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? देवता। देवताओं की निशानी क्या है? इशारे से समझना। हमारी पढ़ाई का विधान इशारा है। इशारे से समझने वाले बुद्धि इतनी शुद्ध बाबा कर देता है जो इशारों से हम समझते हैं। बाबा क्या कहता है? जो इशारे से समझे सो देवता, जो कहने से समझे सो मनुष्य, और जो कहने से भी ना समझे वो बोलना भी अच्छा नहीं लगता। हमें ये नेचुरल संस्कार अपना बनाना है, इशारों से चलने वाले, इशारों से। हम सब रोज सुनते हैं अव्यक्त इशारे, उसको छोड़ो कितना समय याद रहता है। आज का बता दो, आज का बता दो। राइट बाबा मुरली में कितने इशारे देते हैं? बाबा सूक्ष्म है, बाबा की पढ़ाई सूक्ष्म है। जितना हम सूक्ष्म बनते जाएंगे, बुरा नहीं मानना, आपको मेरी बात कटु लग सकती है, लेकिन ये निश्चित जानिए, जितना जितना हम देही अभिमानी होंगे, उतना इशारों से चलने वाले होंगे। इशारों से चलने वाले होंगे, जितना देह अभिमानी होंगे, वाचा, आत्मा सूक्ष्म है तो सूक्ष्म इशारों से समझने वाली है। प्रभा दीदी को याद होगा, बचपन की साथी है, बाबा मम्मा के आगे सभा बैठी है, बाबा मम्मा है, कोई किसको कहता नहीं था अभी तुम उठो, लाइन में आओ, उठो, कोई नहीं कहता था। बाबा मम्मा दृष्टि देते थे, हम दृष्टि से समझते थे बाबा मुझे बुला रहा है, राइट? वो भी पता चलता था। अगर कोई गलती से उठ करके जाता था सामने, तो बाबा की दृष्टि उसको पड़ती नहीं थी, जिसको बुला रहा है उसी को आना होता था। ये तो देखा है, हम लोगों ने देखा हुआ है, किया हुआ है। तो बाबा हमें जितना रोज, नहीं तो रोज बाबा को ये सबक देने की क्या आवश्यकता है, तुम आत्मा हो, देही अभिमानी बनो, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि सारी कारोबार हमारी सूक्ष्म लेवल पर चलने वाली है। वो सूक्ष्मपन के संस्कार चाहिए, इशारों से चलने के संस्कार चाहिए। आप सबको पता है दादी जानकी को क्या क्लास में पसंद नहीं था, सबको पता है। ऐसे बिखरे बिखरे बैठते हैं, दादी को पसंद आता था? कभी नहीं। बाबा को पसंद आता था? नहीं। मैं एक मिसाल दे रही हूं, लाइन कायदा, यूनिवर्सिटी है, क्लास कैसा होना चाहिए। कितनी बार बाबा कहता है, कितनी बार दादियां कहती हैं, कितनी बार हम लोग कहते हैं, वो जो चीज है वो हमारी नेचर में, संस्कारों में चाहिए, उसको हमने डेवलप करना है। आपकी रूलिंग पावर रिफाइन, आपको बोलना ना पड़े। रूलिंग पावर वो क्या हुई जहां बोलना पड़ता है? रूलिंग पावर वो है जो आपके वाइब्रेशन से, आपके संकल्पों से कारोबार हो। आपने कभी कोई चित्र देवताओं का मीटिंग करते हुए का पाया है? इनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनकी मीटिंग चल रही है, इनके चेहरे से, देवताओं के चेहरे से कभी आपने देखा ये कुछ सोच रहा है? कोई कोई चित्र दिखता है आपको? कौन सी चीज दिखाई देती है? वो एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा प्रिंसिपल है। सत्योगी एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा प्रिंसिपल, जो हमारे अंदर बाबा संस्कार के रूप से देखना चाहते हैं, वो कौन सा है? देवताओं के चित्रों में दिखता है दृष्टि। बोलो रीना दीदी, आत्मिक दृष्टि। और बोलो दीव की दीदी, निश्चिंतता। हर्षित, और बोलो पुटपट्टी, बोलो क्या बोल रहे? पवित्रता। बहनों चाहिए दातापन, आज का कलेक्टर लेने वाला है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, नाम ये कलेक्टर, लेने वाला, कलेक्शन लेने वाला। हमारा ये नहीं है, हमारा है दातापन, देने वाला। एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा में क्या है, जो दूसरों के कार्य को सहजता से संपन्न करा सके उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। कार्य को विधि पूर्वक सुचारू रूप से करा सके। तो उसमें आएगा देने का संस्कार। अगर किसी के अंदर संस्कार आ गया कि मैं इसमें मेरा क्या फायदा होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर कार्य करते करते, सेवा करते करते, प्रशासन की अच्छी तरह वो ये सोचे मैं रोड तो अच्छी बना रहा हूं, इसे मेरा क्या फायदा है, वो गया, करप्शन आ गई, अडल्टरेशन हो गई। लेने का संस्कार आ गया ना, तो जहां पर लेने का आ जाता है वहां पे और कई प्रकार की बातें आ जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर माना देने वाला, देने वाला, मास्टर दाता, ये दातापन के संस्कार चाहिए। वो हमने क्या देना है, सब चीज देनी है, देना है, देना है, देना है। एक बात याद रखना, ये देने की बात को हम दो शब्दों से कह करके समाप्त कर देते हैं। क्या देना है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ कामना का एनालिसिस तो करो जरा। बाबा ने मुरलियों में बताया, बाबा ने तो सब बातें पढ़ाई हैं। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा चांस है, तुम्हारा चांस है, कहीं पर तुमको नहीं मिल रहा, दूसरे को मिल रहा है, आप क्या करोगे, दाता बन करके दे दो। ठीक है, अगर तुम्हारा हक है, तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हें बिना कोई कार्य किए वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा, यानी मार्क्स मैं तुमको दे दूंगा, भगवानों वाच। मुझे तो इन चीजों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूं इनसे। तुम्हें बिना कुछ किए तुम्हारे मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, हमें क्या चाहिए। देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। आप दूसरे को चांस देंगे, बाबा आपको 10 चांस और देगा। अनुभव है ना, सबका अनुभव होगा। आप एक छोड़ेंगे ना, बाबा 10 देगा। वो संस्कार एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का संस्कार चाहिए वो कौन सा, सबको सुख देना, सबके कार्य को सहज करना। क्यों, उसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी होने के कारण उसके पास पावर है, प्रशासन तो यही है ना, मानो प्रशासन में लोग दुखी हैं, तो कहें ना ये कैसा प्रशासन है, बोलते हैं ना ये कैसा प्रशासन। प्रशासन मन सुख देवे, इसमें और एक कदम आगे बढ़ते हैं, मुश्किल को सहज करने वाला। प्रशासक क्या हुआ, अगर कार्य को सहज न कर सके, मुश्किल सॉल्व न कर सके, ये तो उसका काम है। मुश्किल को सहज करने वाला, जिसका भावार्थ क्या निकलता है, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ONGC के चेयरमैन हैं, कोई बात से आए थे मिलने के लिए, जयंती बहन भी थे, तो कोई बात से उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोगों को एक ही सेंटेंस बोला, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं है, नथिंग इम्पॉसिबल। कैसे करना है वो बताओ, नहीं हो सकता वो नहीं, कैसे करना है वो विधि सोचो। तो प्रशासक के अंदर वो स्किल, वो कला होनी चाहिए। वो नहीं, अकबर ने परीक्षा ली थी बीरबल की, इस लाइन को बिना हाथ लगाए छोटा करके दिखाओ, परीक्षा थी ना, उसने क्या किया, लंबी लाइन खींच दी, वो लंबी बड़ी हो गई, वो छोटी हो गई, यही कहा गया था ना उसको, बीरबल को बिना हाथ लगाए इसको छोटा करके दिखाओ। तो इसके पीछे द्वापर कलयुग में अगर ये हो रहा है, अगर इतनी विजडम, कलयुग में आए होंगे ना ये लोग, तो इतनी विजडम अगर कलयुगी वजीर के अंदर है, तो सत्युग वालों के अंदर क्या नहीं होगा। इससे निकलती पॉइंट आती है, बाबा कहते बच्चे तुम बड़े बन जाओ, बाबा क्या कहता है, बेहद दिल, विशाल दिल, 7 फुट की बुद्धि, ये कहता है ना। कब कहा बाबा ने इतनी चिड़िया जैसी रखो दिल अपनी, कहा। विशालता क्या है, बेहदपन क्या है, बेहदपन अर्थात सबको एनकम्पास करना, बेहद विशाल, अपने आप को बड़ा बड़ा ऊंचा कर लो। ऊंचा कैसे करेंगे, कोई खींच के तो ऊंचा नहीं करेगा, अपने गुणों में कलम। मीठी बहनों, बाबा ने हमें सब प्रकार की कलाएं सिखाई हैं, मुरलियों में है, सब मुरलियों में है, कोई नई बातें नहीं है, सब बाबा ने मुरलियों में सिखाया है। आप अवेक बाप दादा की मुरलियां उठा के पढ़ो, सब कलाएं मिलती हैं, सब कलाएं, सब स्किल्स मिलते हैं, लेकिन आती है बात उनको धारण करने की आती है। ऊंचे उठ जाओ, अपने मन को विशालता में, बुद्धि को विशाल बनाओ। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, किसी ने कुछ किया तो आपका काम क्या है? टिट फॉर टैट या आगे चलो? क्षमा, ऊंचे उठ जाओ अर्थात विशाल बुद्धि बनो अर्थात क्षमा करो। ये हम धीरे धीरे सीखते हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं, बने बनाए तो नहीं होते हैं। बने बनाए हो तो हमको पढ़ने की जरूरत ही ना हो ना। बाबा के पास हम आते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। धीरे धीरे समझ आती है। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पाद। समझ धीरे आती है। वो स्किल्स मैं चाहूंगी प्यारे बाबा के जो महावाक्य हैं, अव्यक्त बाप दादा के, आप बहने रिसर्च करो। अवधेश दीदी, हमारी बहने रिसर्च करें कि बाबा ने प्रशासन संबंधी कौन कौन सी धारणाएं हमें दी हैं। मुरलियों से निकालिए आप, आपको इतना आनंद आएगा, आप जंप लगाएंगे, अरे वाह, बाबा ने कितनी अच्छी बातें बताई। जंप लगाएंगे आप। इसका अध्ययन करिएगा। अगर राजा अपने जूनियर के साथ मुंह मलाजा करे, मुंह मलाजा समझते हैं क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट, वो कुछ बोले, वो प्रशासक हुआ, राजा हुआ। राजा माना कहा और किया, वो विल पावर, वो अथॉरिटी हमारे अंदर योग बल से आएगी और कोई साधन नहीं है। अगर टिकटॉक किया तो वो राजा ही संस्कार नहीं है, रूलिंग पावर नहीं है। जिसको लोग मुहावरे शब्दों में कहते हैं, लोग उसका लोहा माने। अथॉरिटी को स्वयं को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती, मैं राजा हूं, मैं प्रशासक हूं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती। उसका स्वरूप बोलता है। क्यों? दादी बहुत सिंपल थे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूं। दादी बहुत सिंपल थे, सिंपलेस्ट। 10 धर्म गुरुओं के बीच में खड़ी होती थी, सहज पहचानी जाती थी ये चीफ है, सहज पहचानी जाती। कैसे पहचानी जाती थी? अपनी रूहानियत से, अपनी करिश्मा से पहचानी जाती थी। हमें अपने उस स्वरूप को इमर्ज करना है। हमारे दो टाइटल हैं, हिज होलीनेस एंड हिज हाइनेस। ये दोनों टाइटल पर हमें काम करना है, ठीक है? बहुत मजा आएगा आपको। एक सफल प्रशासक क्या होता है। हम सबको बाबा ने सेंटर्स देकर सेंटर इंचार्ज तो बनाया। सेंटर इंचार्ज केवल ज्ञान सुनाने वाले नहीं है, सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। हम सब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। कुछ समय में मेरे मन में ये ख्याल है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो ब्रह्मा कुमारी बहनों की होनी चाहिए उस पर हम थोड़ा कैप्सूल तैयार करें। कुछ समय से मेरे मन में है, कर नहीं पा रहे, कौन मदद कर सकता है वो हाथ करेगा। बिंदु बहन, लक्ष्मी बहन और रीना बहन, तो मैं आप तीनों को ही देती हूं काम, फिर इसमें एडिशन करेंगे। एक बीके प्रशासिका में क्या स्किल्स चाहिए और उनको हम कैसे डेवलप करें, ठीक है। तो आप तीनों बहनें आपस में मिलकर के अवधेश दीदी के साथ ले लेना, है ना। अवधेश में
बीके जोन प्रशासक
टोटल टोटल कहते हैं, उसमें बीके का भी निकालना अलग और टोटल भी निकालना। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सारी बहनों को देख करके तो दिल गदगद हो गया है। सच, हमारे हरीश भाई की बहुत दिल की शुभ भावना रहती है और मेरी भी है। हमारी बहनें सब एक से बढ़कर के एक हैं, हर एक के अंदर कला है। थोड़ा सा और मिल जाएगा तो और अधिक अच्छा हो जाएगा। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है इसको दत्तचित्त होके करना। दत्तचित्त, दत्तचित्त समझते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन से। और यहां सुन करके लिखना, नोट्स लेके जाना, फिर जाकर के अपने अपने सेंटर्स पर रोज एक लेसन कराना, भाई बहनों को कराना, तो आपका अभ्यास होगा। जाके रख नहीं देना, रोज सुनाना जब तक पूरे लेसन हो जाए। ये हमको गुलजार दादी सिखाते थे। हम लोग भट्टी करके जाते थे ना, तो गुलजार दादी कहते थे क्या क्लासेस हुई वो क्लास में सुनाओ, तो हम लोग क्लास में सुनाते थे। ऐसे आप भी ये करके फिर क्लास में जाके सुनाना, उससे आपका अभ्यास हो जाएगा और आप स्वयं भी उसमें ऐड करेंगे। ओके, अभी आपसे छुट्टी लेती हूं क्योंकि 10 बजे नीचे क्लास कराना है। शांतिवन जी, मैं आज भी हूँ कल भी हूँ, मेरे को बांधा हुआ है। ओके, सब संतुष्ट हैं, खुश हैं, सदा खुश हैं, सदा खुश हैं, वेरी गुड। ओके, आप सबके लिए टोली भी है। ओम शांति। तो अभी विश्वास से चालू किया था हमने, विश्वास से। आपको एक हंसी की बात सुनाती हूं। आज बाबा का मुरली में लास्ट सेंटेंस है ना, बच्चे 84 जन्मों की कहानी होगा, तो रजौरी का हो सकता है किसी ने सुना भी हो। रजौरी गार्डन है ना दिल्ली का, तो उसमें राजकुमार भाई दिल्ली के बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर होते थे। वो अपने कोई दोस्त को लेकर के आए, तो कोर्स कराना था। तो कहते हैं बहन जी ने बोला ये कोर्स इतना पूरा हुआ, कल मैं आपको सीढ़ी पर समझाऊंगी, परसों मैं आपको झाड़ पर समझाऊंगी, फिर मैं आपको साइकिल पर समझाऊंगी। तो वो घबरा गया, ये कैसा कोर्स है जो सीढ़ी पर, झाड़ पर और साइकिल पर समझाया जाएगा। उसने जाके राजकुमार भाई को बोला, भाई जी ये बहने तो ऐसे बोल रही है, सीढ़ी पर, झाड़ पर, उसमें ऐसा कैसे होगा। तो बहुत हंसे राजकुमार भाई, उन्होंने स्पष्ट किया। तो हम लोग की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हमारी इसमें बहनों, हम लोग को ये कला भी सीखनी है, हमारे शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। हम कौन से शब्द यूज करते हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके, ओम